लुका अध्याय 20। किसी एक दिन जब यीशु अपने शिष्यों के साथ लोगों को सुसमाचार दे रहे थे, प्रधान पुरोहित और शिक्षक बुजुर्ग लोगों के साथ वहां आ खड़े हुए। उनका कहना था कि यीशु यह बताएं कि किसके अधिकार में होकर वे ये सब कर रहे थे, या किसने यीशु को यह अधिकार दिया था। यीशु ने जवाब में कहा,
मैं भी एक बार तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम जवाब दो। यूहन्ना का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या इंसान की ओर से?
वे आपस में कहने लगे,
अगर हम कहें परमेश्वर की तरफ से, तो यीशु कहेंगे कि फिर तुमने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। लेकिन अगर हम कहें वह मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा थी, तो सब लोग हमको पत्थरवाह कर देंगे, क्योंकि यूहन्ना को वे एक नबी समझते थे।
इसलिए उन्होंने उत्तर दिया,
हमें कुछ नहीं मालूम।
यीशु ने भी उनसे कहा,
मैं भी तुम्हें ये नहीं बताता कि मैं किसके अधिकार से ये सब करता हूं।
तब यीशु लोगों को यह दृष्टांत बताने लगे,
एक आदमी ने अंगूर का बगीचा लगाया और किसानों के हाथ जिम्मेदारी देकर बहुत दिनों के लिए दूर देश चला गया। फसल काटे जाने के समय उसने एक नौकर को मजदूर किसानों के पास भेजा, ताकि वे बगीचे से कुछ अंगूर उसे दें। लेकिन उन मजदूरों ने उसे मार पीट कर खाली हाथ वापस भेज दिया। फिर उसने दूसरे नौकर को भेजा, उसके साथ भी उन्होंने वैसा ही बर्ताव किया। तब उसने तीसरा नौकर भेजा, लेकिन उसे भी जख्मी करके बाहर फेंक दिया गया। तब उस बगीचे के मालिक ने कहा, मैं क्या करूं, अब मैं अपने बेटे को भेजूंगा, शायद उसे देखकर वे उसे इज्जत देंगे। जैसे ही अंगूर के बगीचे के उन मजदूरों ने उसे देखा तो कहा, ये तो जायदाद का मालिक है, आओ इसे मार डालें, ताकि सब कुछ हमारा हो जाए। इसलिए उन लोगों ने उसे बगीचे के बाहर मार डाला। ऐसे में बगीचे का मालिक उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा। उसने आकर उन बगीचे के मजदूरों को मार डाला और बगीचा दूसरों को दे दिया।
यह सब सुनने पर उन्होंने कहा,
परमेश्वर ना करे ऐसा हो।
उसने उनको देखकर कहा,
तो वो लिखी हुई बात किसके लिए है, जिस पत्थर को ठेकेदारों ने बेकाम का समझा था वही कोने का पत्थर ठहरा है। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जिस पर ये पत्थर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा।
उस समय प्रधान पुरोहित और शास्त्री इस धुन में थे कि यीशु को किस तरह पकड़ लें, लेकिन उन्हें लोगों का डर था। वे ये समझ गए थे कि यीशु इस दृष्टांत से उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे। वे यीशु की ताक में लगे थे और उन्होंने जासूस भेजे कि धर्म का भेज धरकर यीशु की कोई ना कोई बात पकड़ें, ताकि उन्हें गवर्नर के हाथ और अधिकार में सौंप दें। यीशु से बातचीत करते हुए उन लोगों ने पूछा,
गुरुजी, इसमें कोई शक नहीं कि आप परमेश्वर का रास्ता बताते और खरा उपदेश देते हैं और किसी की तरफदारी नहीं करते हैं। बताइए कि हमें कैसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं।
उनकी चालाकी को जानकर यीशु ने उन लोगों से कहा,
तुम मेरी परख क्यों कर रहे हो? चांदी का सिक्का मुझे दिखाओ, इसके ऊपर किसकी तस्वीर खुदी हुई है?
उन लोगों ने कहा,
राजा की।
यीशु बोले,
जो राजा का हिस्सा है वो राजा को दो, और जो कुछ परमेश्वर का है वो परमेश्वर को।
यीशु के लोगों की मौजूदगी की वजह से यीशु की कही हुई बातों पर ना ही उनके विरोधियों ने कुछ टीका टिप्पणी की और ना ही कोई जवाब दिया। तब जी उठने पर विश्वास ना करने वाले सदूकियों ने आकर सवाल किया,
गुरुजी, मूसा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी जिसके बच्चे नहीं हैं मर जाए, तो उसका भाई उस महिला से ब्याह करके अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे। मान लें कि सात भाई थे और पहले का ब्याह तो हुआ, लेकिन इसके पहले के बच्चे हों वो मर गया। दूसरे भाई ने उस महिला से शादी की, लेकिन वो भी निसंतान मर गया। तीसरे भाई ने उस महिला को अपनी बीवी करके अपना लिया। इस तरह से सभी सात भाई निसंतान मर गए। आखिर में वो महिला भी चल बसी। इसलिए जब सब जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वह तो सातों भाइयों की पत्नी रही थी।
जवाब में यीशु ने कहा,
इस दुनिया के लोग ब्याह करते और करवाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक होंगे कि आने वाली दुनिया के वारिस हों और जी उठने वालों में उनकी गिनती हो, उनके लिए वहां ब्याह नहीं है। वे लोग फिर मरेंगे भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों की तरह होंगे और वे परमेश्वर की संतान हैं, जो एक नया जीवन जीने के लिए जिलाए जाएंगे। अब ये कि मुर्दे जिलाए जाएंगे या नहीं, मूसा ने भी झाड़ी की घटना में बताया है। अब्राहम, इजहाक और याकूब के मरने के बहुत समय बाद वो परमेश्वर को अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर मुर्दों के नहीं लेकिन जीवित लोगों के हैं, क्योंकि परमेश्वर के नजदीक सभी जीवित हैं।
यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने कहा,
हे गुरु, आपने अच्छा कहा।
इसके बाद उनमें से किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। यीशु ने उन लोगों से कहा,
मसीह दाऊद का बेटा क्यों कहलाता है? दाऊद ने भी खुद भजन की किताब में लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे वश में ना कर दूं, सारे अधिकार को थामे रखो। दाऊद उन्हें प्रभु कहकर पुकारता है, तो फिर वो उसकी संतान कैसे हुए?
लोग उनकी बात को सुन रहे थे। तभी यीशु ने अपने चेलों से कहा,
शास्त्रियों से सावधान रहो, उनको लंबे लंबे चोगे पहनकर घूमना अच्छा लगता है। वे बाजारों में लोगों से नमस्कार लेते फिरते हैं, उन्हें सभा सम्मेलनों में आगे की जगह और दावतों में मुख्य स्थान पसंद होते हैं। वे विधवाओं पर अन्याय करके उन्हें लूट लेते हैं और दिखावे के लिए लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। इन्हें तो भारी सजा मिलेगी।